Hare Krishna.
Hare Krishna.
Tab sab mere peeche dohraye hain. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Ena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam. Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavamsha Sri Rupam Sardajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sarvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitam Sham. Hey Krishna Karuna Sindhu Deena Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpataru Vrishya Kripa Sindhu Greva Chai Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasani Gaurabhakta Vrindara Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है इस संडे कार्यक्रम में। तो आज हम चर्चा करेंगे, एक विशेष टॉपिक है। वो टॉपिक क्या है? डेथ ए फाइनल कॉल। मृत्यु आवाज को थोड़ा सा कर सकते हैं या तो कम कर सकते हैं। मृत्यु, हरे कृष्णा, ठीक है, हरी बोल, ठीक, हरे कृष्णा। तो मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम सुनना नहीं चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन देखा जाए सारे जो शास्त्र हैं वो हमें बारंबार एक ही विषय की ओर ले आते हैं। जनरली आपने कई प्रवचन सुने हैं इस कॉन में, तो जनरली इन चीजों पर बहुत जोर दिया जाता है। कौन सी चीजें हैं? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, क्लेश, भौतिक जगत का ये नेचर है, स्वभाव है इस मटेरियल वर्ल्ड का। इस कौन के अलावा बाकी स्थानों में लोग बड़े बड़े जो दिग्गज हैं प्रवचन करता है, लेकिन वो इस चीज को अवॉइड करते हैं, वो इस चीज की चर्चा नहीं करते। लेकिन वास्तव में कहा देखा जाए शास्त्रों में केवल तीन चीजों का वर्णन आता है। एक है कि इस भौतिक जगत में हमारी बीमारी का कारण क्या है, क्यों हम इस भौतिक जगत में हैं, और उसका रिजल्ट क्या है, उस बीमारी के कारण हम कौन से बड़े बंधन में गिरने वाले हैं, और तीसरी चीज क्या है, उस बंधन से कैसे निकला जाए। सारे शास्त्र यही तीन चीजों का वर्णन करते हैं। लेकिन जनरली जो सो कॉल्ड गुरुज हैं, साधुज हैं, बाबाज हैं, महंता हैं, महंत हैं, वो क्या करते हैं? लोगों का मनोरंजन करने के लिए, आजकल की कथाएं किस चीज के लिए होती है? मनोरंजन, कृष्ण रंजन नहीं, मन को रंजन करने के लिए, और शास्त्रों की वास्तविकता को वो प्रकट नहीं करते हैं जनता के सामने, और उनको अज्ञान के अंधकार में क्या करते हैं? वैसे ही बनाए रखते हैं, इसलिए वो लोग इन चीजों की चर्चा नहीं करते। तो लेकिन वास्तव में कोई भी जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो यदि सोचते हैं, अरे मृत्यु की बात कर रहे हो, शुभ शुभ बोलो, कभी कोई व्यक्ति बोलता है क्या हो गया आज आपको, कुछ शुभ शुभ बोलो, लेकिन वास्तव में हम बने ही हैं इस मृत्यु से, मृत्यु को जीतने के लिए, क्योंकि मृत्यु शब्द जैसे सांप शब्द का हम उच्चारण करते, पावर ऑफ वर्ड्स, शब्दों का कितना प्रभाव है, सांप शब्द को हम उच्चारित करते तो तभी भय हो जाता है कि नहीं, उसी प्रकार से मृत्यु के मृत्यु शब्द को लेकर ही तुरंत हमारे हृदय में भय की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। और क्यों? क्योंकि हम ये जगत की इतनी सारी चीजों से आसक्त हो गए हैं, और मृत्यु आ जाए हमारे जीवन में तो हमारे सारे आसक्तियों को हमें दूर कर देगी, इसलिए हम नहीं चाहते इस चीज की चर्चा करना। तो वास्तव में जो भी शास्त्र कहते हैं, जो भी भगवत भजन में लगा है, या जो साधक भक्ति में जो लगा है, उसको क्या कहते हैं? साधक कहते हैं, जो साधना कर रहा है भगवत प्राप्ति के लिए। तो जो व्यक्ति साधक है उस व्यक्ति को ये जानना बहुत आवश्यक है मृत्यु के बारे में। जैसे श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज कहा करते थे, हर एक व्यक्ति को दो चीजों का स्मरण रखना चाहिए अपने जीवन में, एक क्या है? मृत्यु, और दूसरा है भगवान का पवित्र नाम। हमेशा स्मरण करो इन दो चीजों को। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, बाय अंडरस्टैंडिंग डेथ वन में सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा इन एडवांस, पहले एडवांस, पहले से अब क्या हो जाते हो? कृष्ण के चरणों में शरणापन्न हो जाते हो, शरणागत हो जाते हो जब आप मृत्यु के बारे में जानते हो। तो श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, एज श्योर एज डेथ, बाकी चीजें हमारे जीवन में श्योर है या नहीं है, लेकिन एक चीज श्योर है, और वो क्या है? मृत्यु। तो इस प्रकार से सारे शास्त्रों में इस चीज का विशेष रूप से वर्णन किया गया है, क्योंकि इस जगत की हर एक जो एक्टिविटी है, हर एक कार्य हमें शिक्षा देता है कि किस प्रकार से क्विकली तुरंत भगवान के शरणागत होना चाहिए। शरणागति हमें सिखाता है, क्योंकि भगवान भगवत गीता में इस चीज का बहुत स्थानों में वर्णन करते हैं, हर अध्याय में इसका वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, अरे अर्जुन दर्शन करना सीखो, कौन सी चीज का? चार चीजों का दर्शन, क्योंकि ये चीज हमें क्या करती है? हमारे जीवन में वैराग्य को लाती है, अनासक्त हो जाते हैं हम, डिटैचमेंट को हमारे लाइफ में लाती है, किससे? इस शरीर के प्रति जो हमारा ये है आसक्ति है, स्नेह है, प्रेम है, लगाव है, उससे हमें क्या करता है? ये नॉलेज डिटैचमेंट क्रिएट करता है। और आज वास्तव में भगवत गीता उसी चीज के लिए है। आज भगवत गीता का क्या है? बर्थडे है ना, जन्मदिन है, जयंती है। तो भगवत गीता का प्राकट्य इसीलिए हुआ है। तो भगवत गीता में कृष्ण कहते कि अर्जुन तुम्हें चार चीजों का दर्शन करो मेरे दर्शन से पहले। इवन हम देखते हैं लॉर्ड बुद्धा के जीवन में, उन्होंने कौन सी चीजों को देखने मात्र से उनका हृदय परिवर्तित हुआ? इन चार चीजों को। और वास्तव में ये चार चीजें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें से भी जो मृत्यु है उससे क्लोज हमारे लिए कोई और नहीं है दूसरा। पूरा भगवान ने एक आठवां अध्याय मृत्यु का वर्णन करने में लगा दिया है, अक्षर ब्रह्म योग, जिसको भगवान ने कहा है। तो आठवें अध्याय में भगवान ने केवल इस विषय की चर्चा की है अलग अलग प्रकार से पूर्ण रूपेण। और वास्तव में जिन महादुखों की व्यक्ति बात करता है, व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के दुख आ सकते हैं, लेकिन महादुख क्या है उसका जब वर्णन आता है तो वो क्या है, महादुख मृत्यु है। ऐसा दुख जो सबके लिए कॉमन है। क्या है? सबके लिए कॉमन। और कोई भी उस इस दुख को नहीं चाहता, और हर एक व्यक्ति को उस दुख को न चाहते हुए भी स्वीकार करना पड़ेगा। यह सत्य है। कई बार सत्य हमें कटु लगता है, लेकिन इस चीज को सुनना भी उतना ही आवश्यक है जितना हम कृष्ण की वृंदावन की लीलाओं को सुनते हैं, कृष्ण की माखन चोरी आदि की लीलाओं को सुनते हैं। उसी प्रकार से इस विषय को सुनना भी उससे भी बढ़कर है। तो इस प्रकार से महादुख क्यों कहते हैं मृत्यु को? क्योंकि ये सबके लिए कॉमन है, और ये कोई नहीं चाहता, और न चाहते हुए भी ये आकर आपका आलिंगन करेगा। आप चाहे आलिंगन करना चाहो या ना चाहो, तो ये ट्रुथ है, ये सत्यता है। तो क्यों एक व्यक्ति को मृत्यु बहुत फियरफुल, भयावह क्यों लगता है? उसके दो कारण बताते हैं शास्त्र। क्यों? क्योंकि ये जो मृत्यु नाम की चीज है वो हमारे लिए नेचुरल नहीं है, हमारे लिए स्वाभाविक नहीं है। ये मृत्यु हमारे लिए क्या है? अस्वाभाविक है। और दूसरा, क्यों हम भयभीत रहते हैं? क्योंकि हम हमारे शरीर से सर्वाधिक आसक्त हैं। क्या है? सर्वाधिक आसक्त। तो क्यों क्यों हम भयभीत हैं मृत्यु से? क्या है दो रीजन, क्या है दो कारण बताइए, क्यों हम मृत्यु से भयभीत है हर एक व्यक्ति? यह हमारे लिए स्वाभाविक नहीं है। और दूसरा, क्योंकि हम इस शरीर के प्रति सर्वाधिक आसक्त हैं, इस शरीर से सर्वाधिक प्रेम या प्रीति रखते हैं। हाँ, तो वास्तव में भगवत गीता की जो पहली शिक्षा है वो यही है। हमारे लिए नेचुरल नहीं है ये कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि हम ये शरीर नहीं है, और मृत्यु किसको है? शरीर को है। मृत्यु हमें नहीं है, हम नहीं मरने वाले। ये जो शरीर कुछ समय का हमारा मित्र है, कुछ समय कुछ दिनों के लिए हमें दिया गया है, उसकी मृत्यु हो सकती है, उसका विनाश है, लेकिन हम इस शरीर से अलग है, हमारे लिए मृत्यु नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा गीता में, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा न च भविता न भूया अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हाँ, भगवान ने कहा इस शरीर का विनाश होगा, लेकिन फिर भी जो शरीरधारी आत्मा है उसका विनाश नहीं है, उसका ना जन्म है ना उसका मृत्यु है। गीता में आगे कहते कृष्ण, अविनाशी तु तद्विद्धि विद्यमिन। जानो किसको अविनाशी जानो? आत्मा को। आप शरीर नहीं हो। भगवान ने कहा नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। ये जो आत्मा है इसको आप काट नहीं सकते, इसके टुकड़े नहीं कर सकते, इसको जला नहीं सकते, इसको भिगा नहीं सकते, इसको सुखा नहीं सकते। क्या ऐसी चीज है? और वो चीज कौन है? हम स्वयं है। हाँ, देही नित्यम अवध्योयम, वध नहीं होगा। भगवान कहते ये आत्मा का वध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? भगवान कहते ये मेरा अंश है, ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। इसी कारण से, क्योंकि भगवान का शरीर किस चीज से बना हुआ है? भगवान सत चित और आनंद। सत मीन्स शाश्वत, चित मीन्स पूर्ण ज्ञानमय, आनंद मीन्स आनंदमय। तो उसी प्रकार से हम भगवान के अंश हैं, तो हम भी इन तीन चीजों से बने हुए हैं आत्मा। लेकिन हाँ, शास्त्र कहते कि ये जो जीव है वो भगवान से अलग होकर जब वो देखता है कि अरे कृष्णा आप ही क्यों एंजॉयर हो? क्योंकि हम जब भगवान को उनके धाम में रिप्लेस करना चाहते हैं, कई बार कई मैनेजर होता है मालिक को ओवरटेक करना चाहता है, जैसे बंगाल में एक राजा हुए थे नवाब हुसैन, उससे पहले एक राजा थे हिंदू व्यक्ति, वो ये नवाब हुसैन नाम का एक युवक उनके वहां नौकरी नौकर था, लेकिन कुछ कारणों से इन्होंने क्या किया, उस राजा को ही हटा के खुद राजा बन गया, एक नौकर रिप्लेस करना कर दिया। तो उसी प्रकार से जब जीव भगवान का स्थान ग्रहण करना चाहता है, क्योंकि हम सबके अंदर ईश्वर भावना है, ईश्वर भाव भोग करने का, इंजॉयर बनने का, प्रोप्राइटर बनने की भावना है, बॉस बनने की भावना है, इसलिए भगवान क्या करते हैं, अनादि बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे। जब जीव भोग वांछा एंजॉय करने की कामना करता है भगवान से अलग होकर, तो निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे, तो जो माया है उस जीव की गर्दन को पकड़ते हैं और उस जीव के गर्दन को पकड़कर उसको एक बोरे में डाल देते, जैसे कुत्ते होते हैं ना, कुत्तों को कई बार फेंकना होता है तो उनको बोरे में डाल के बांध के दूर फेंका जाता है। तो उसी प्रकार से जो जीव भगवान से अलग होना चाहते हैं उनको भगवान की जो भौतिक शक्ति है मटेरियल एनर्जी वो उनकी गर्दन पकड़ती है और बोरे में डाल देती है, पैक करती है और फेंक देती है इस भौतिक जगत में। और ये भौतिक जगत है क्या, आध्यात्मिक जगत का डस्टबिन है। क्या है, आध्यात्मिक जगत का डस्टबिन, जो छोटा सा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, ये मटेरियल वर्ल्ड बहुत छोटा है साइज में। तो जो वो बोरी क्या है, वो बोरी क्या है, ये शरीर है जिसमें हम सबको डाला गया है। और इस बोरी में आने के बाद, शरीर में आने के बाद हम नाना प्रकार के उपाय योजनाएं प्लान्स बनाते हैं कि मैं कैसे इंजॉयर बनूं, कैसे मैं स्वामी बनूं, प्रोप्राइटर बनूं, हाँ भगवान से भी बढ़कर बनना चाहते हैं। और इसी कारण से, क्योंकि उसको ऐसे शरीर में डाला जाता है जो शरीर बिल्कुल उसके स्वभाव से उल्टा है। सत, आत्मा का स्वभाव क्या है, सत मीन्स इटर्नल शाश्वत, लेकिन अभी उसको ऐसे शरीर में डाला है जो असत है, टेम्पररी है। चित, चित मीन्स ज्ञानमय, अभी ये अज्ञानमय शरीर है। सच चित आनंद, आत्मा का स्वभाव है निरंतर आनंद अनुभव करना, ब्लिसमय है, तो लेकिन ये शरीर में डालने मात्र से निरानंद वो घूमता रहता है, कोई आनंद की कामना नहीं है, कोई भी आनंद का लवलेश मात्र भी नहीं है। इसी कारण से आत्मा को इस शरीर में डालते हैं और वो आत्मा, वो जीव अपने आप को तब से क्या सोच बैठता है, मैं कौन हूं, कौन हूं मैं, शरीर हूं। यही सबसे बड़ा अज्ञान कोई है तो वो ये है अज्ञान की शुरुआत, कि मैं यह शरीर हूं। और यही सबसे पहला भगवद गीता का उपदेश है कि आप ये शरीर नहीं हो। और इस शरीर से हम इतना प्रेम करने लगते हैं, सबसे अधिक प्रीति श्रीमद् भागवतम कहता है कि व्यक्ति को किसी चीज से सर्वाधिक प्रेम है तो वो अपने शरीर से है। हमारे एक मित्र थे, उनको कुछ एक बीमारी हो गई थी, तो डॉक्टर ने कहा कि उंगली काटनी पड़ेगी आपकी, तो उन्होंने, मैं अमेरिका जाके इलाज कराऊंगा, कटवाऊंगा नहीं, उन्होंने कहा पूरा हाथ चला जाएगा तुम्हारा। और वो अमेरिका भी नहीं जा पाया और 6 महीने के बाद देखा कि पूरा हाथ ही निकालना पड़ा उसका। तो वास्तव में हम शरीर से इतना अधिक आसक्त है, इतना अधिक प्रीति रखते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये जो शरीर मेरे पास है ये टेम्पररी है, कुछ दिनों का मेहमान है, कुछ दिनों का साथी है, हाँ, और इस शरीर के साथ कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन इस शरीर को हम एंजॉयमेंट का व्हीकल मान लेते, व्हीकल मीन्स भोग करने का ये गाड़ी है ना। इस शरीर से तो हम इस संसार में अलग अलग इंद्रियों के द्वारा अलग अलग रसों को भोगते हैं। तो मृत्यु क्या है वास्तव में, मृत्यु क्या है, इस शरीर का केवल विनाश है। और मृत्यु बहुत सिंपल चीज है, भगवान गीता में बहुत सरल उदाहरण देकर समझाते कि मृत्यु है क्या। मृत्यु तो वासांसि जीर्णानि यथा व्याय नवानि गृणाति नरोपरानि, वासांसि मीन्स कपड़े। भगवान कहते कि हे अर्जुन, ये मृत्यु क्या है कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति के वस्त्र पुराने हो जाते हैं, उस पुराने वस्त्रों को वो त्याग देता है और नए वस्त्र धारण करता है। कभी रोता है व्यक्ति कि बहुत रोना आ रहा है, पुराने कपड़े चले गए, नए कपड़े धारण कर रहा हूं, कोई बच्चा रोता है कभी, नहीं, हम रोते हैं क्या? नहीं, आनंदित हो जाते हैं। लेकिन भगवान ने कहा ये जो शरीर है ये क्या है? वस्त्र है। लेकिन ये जो वस्त्र है ये क्या होते हैं? एक दिन फटने लगते हैं, छेद पड़ते हैं, खराब होने लगते हैं। और ये वस्त्र, इस बॉडी को हमें एक दिन त्यागना पड़ता है और नवा परानी, नया शरीर हमें मिलता है, वो नए वस्त्र। और उसी को क्या कहा गया है? मृत्यु। मृत्यु का मतलब है केवल कपड़े बदलना है। लेकिन कपड़ों से हम बहुत अधिक प्रेम है हमें, है कि नहीं? मृत्यु क्या है? केवल कपड़ों का बदलाव है, चेंज करना है। तो इस प्रकार से या कपड़े चेंज करना, या शास्त्र में वर्णन आता है कि जैसे आपके पास रेंटेड हाउस है या घर चेंज करना, उसी को ही मृत्यु कहा गया है। और जो वास्तव में इस चीज को लेकर यदि इतना भयभीत है तो उस व्यक्ति की जो मेंटेलिटी है एक बच्चे के समान है। कई बार माता पिता को अनुभव है, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं कहाँ ट्रैवलिंग कर रहा तो देखा कोई माता जी वो बच्चों को ट्रेन में कपड़े पहना रहे थे, छोटे छोटे बच्चे पाँव मार रहे हैं, लात मार रहे हैं, नहीं 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 पहनना है। तो वैसे हमारी स्थिति है, चाइल्डिश मेंटेलिटी, कि हम वास्तव में हाँ ये शरीर से सर्वाधिक आसक्त हो गए हैं। हाँ, तो वहां भगवान कहते कि आपके कपड़े गंदे हो गए हैं, उस गंदे कपड़ों को फेंको और क्या करो? नए कपड़े धारण करो। तो उसको मृत्यु कहा जाता है। तो ये जो मृत्यु क्या है? डेथ इज ए वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस कितनी बार मिलता है जीवन में? ऐसा कोई है? तीन चार बार एक्सपीरियंस लिया है मैंने अभी जीवन में? नहीं, जीवन में एक ही बार एक्सपीरियंस हमें मिलेगा। और वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव कोई लंबे समय के लिए नहीं है। और वो अनुभव हमें कितने सेकंड के लिए है? कुछ क्षणों के लिए है। और इस अनुभव से हर एक व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। और इतना महत्वपूर्ण वो मोमेंट है। हाँ, वो जो समय है जिस समय हम ये शरीर त्यागते हैं वो हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए शास्त्र कहते हैं साधन कैले भजन कैले मरते जानले हर, कि आप अपने जीवन में कितने सक्सेस हो गए हो, कितने अपने जीवन में परफेक्शन प्राप्त किया है, कितना भजन किया है, भक्ति आदि किया है, तो उसका कब पता चलेगा? आखिरी समय में। आखिरी जो समय है उस समय पता चलेगा। हाँ, क्योंकि वो समय हर एक व्यक्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो ऐसी एग्जाम है, जो एग्जाम, जो परीक्षा, हाँ, जिस परीक्षा का हमें डेट पता नहीं है और क्या पता नहीं है? टाइमिंग। लेकिन हमें एक चीज पता है, उत्तर पता है। क्या पता है? उत्तर पता है। क्या है उत्तर? हरे कृष्णा 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 हरे हरे लाउडली हरे राम 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 हरे हरे। अभी इस स्कूल्स आदि की जो एग्जाम होती है उसमें टाइम पता रहता है, डेट पता रहती है, क्वेश्चन भी पता नहीं रहता और उत्तर भी पता नहीं रहता। हमारे लिए हमें क्वेश्चन भी पता है, क्या है? अंते नारायण, मृत्यु के समय किसका स्मरण करना चाहिए, ये जनरली क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन परीक्षित महाराज ने पूछा था। तो कहने का तात्पर्य है कि ये एक अनुभव हर एक व्यक्ति को एक ही बार अनुभव करना होता है। और कहा जाता है कि जिस प्रकार से कैमरा से आप फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है, उस सेकंड में ही आपके पास क्या आ जाता है? आप फोटो आपका देख सकते हो। और उस जब वो फ्लैश होता है उसी समय जिस प्रकार के अपने चेहरे की जो मुद्रा है, हाव भाव आदि है, उसी प्रकार का आपका फोटो आ सकता है। तो जिस प्रकार से मृत्यु के समय हमारी भावना है, चेतना है, उसी प्रकार का नया शरीर हमें इस जगत में प्राप्त होता है। तो उसकी तैयारी में वास्तव में व्यक्ति को लगना चाहिए। और यही चीज परीक्षित महाराज ने कही है। क्योंकि जो परीक्षित महाराज जो पूरे भारतवर्ष के राजा थे, उन्होंने ये प्रश्न नहीं पूछा कि इस जगत में प्रॉपरली कैसे रहा जाए, क्योंकि तो अंडरस्टूड है। उन्होंने क्या प्रश्न पूछा? हाउ टू डाई प्रॉपरली, उन्होंने नहीं पूछा हाउ टू लिव प्रॉपरली, ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिसको मरना जिसने सीखा है, आर्ट ऑफ डाइंग जिसने सीखा है, उसने क्या सीखा हुआ है, आर्ट ऑफ लिविंग। जिसने मरने की कला सीखी है, उस व्यक्ति ने जीने की कला अपने आप ही सीख लिए हैं। इसलिए भगवद गीता में पूरा अध्याय इसी के लिए दिया है भगवान ने, हाउ टू डाई प्रॉपरली, आठवां अध्याय आप पढ़ते हैं, अलग अलग कैटेगरीज अलग अलग श्लोकों में भगवान एक्सप्लेन करते हैं। तो परीक्षित महाराज ने एक ही चीज, एक ही क्वेश्चन उन्होंने पूछा, और वो भागवतम इसी के लिए बोली गई है, हाउ टू डाई प्रॉपरली श्रीमद भागवतम। जब परीक्षित महाराज को पता चला कि 7 दिनों में उनकी मृत्यु होने वाली है, उस समय उन्होंने सीधा गंगा और भक्तों का आश्रय लिया और शुकदेव गोस्वामी से बड़े ही विनम्रता के साथ प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमानस्य सर्वथा, जो मरने के लिए तैयार है या मरने के तट पर खड़ा हुआ है, उस व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्ति ने। तो ये वास्तव में उनके लिए केवल प्रश्न नहीं है, ये क्वेश्चन किसके लिए है, हम सबके लिए है। क्योंकि हम हर समय हम मृत्यु के तट पर या मृत्यु के नजदीक हम खड़े हुए हैं, और वास्तव में देखा जाए हम बने नहीं है इस जगत में रहने के लिए। बने हैं क्या, कोई आज तक बना है ऐसा व्यक्ति जो अभी तक रहा है इस जगत में? नहीं। हाँ, फिल्मी सॉन्ग आ सकते हैं, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, लेकिन नहीं, शास्त्र कहते हम बने तुम बने मरने के लिए, है कि नहीं? कोई रहने के लिए कोई बना है इधर? नहीं। तो ये भगवद गीता की वास्तविकता है। तो हम केवल बने हैं मृत्यु को प्राप्त होने के लिए। इसलिए बहुत भयावह चीज है, लेकिन उन व्यक्तियों के लिए बहुत भयावह है जो भगवान का आश्रय जिन्होंने नहीं ले रखा है। इसलिए ऐसे लोगों के जीवन में जो मृत्यु आता है, क्योंकि मृत्यु का वर्णन गरुड़ पुराण आदियों में होता है, जहां कहा गया है कि एक ही साथ 40,000 बिच्छू आपको क्या करते हैं, काटते हैं एक ही समय। आपको किसी का अनुभव है एक बिच्छू काटने का, हाथ ऊपर कीजिए। किसी को काटा है बिच्छू कभी? नहीं, मुझे अनुभव है 2 या 3 बार। तो बहुत पेनफुल है, पाँव में काटा तो पूरा ऊपर तक पेन रहता है, पूरे दिन पेन रहता है। अब सोचो, तो मैं सोच रहा था कि 40,000 बिच्छू यदि काट दे कितना भयावह पेन होगा। उस पेन के कारण, उस भयानक स्थिति के कारण व्यक्ति क्या करता है, मल मूत्र आदि त्याग करता है। तो इसलिए इसी कारण से ये जो प्लैनेट है अर्थ, इसको मर्त्य लोक कहा गया है। क्या कहा गया है? मर्त्य लोक। ये उसको टेक्निकल शास्त्रीय भाषा में ये टर्म यूज किया हुआ है। और यहाँ की जो सारी व्यवस्था है वो जल्दी मरने के लिए है। आपको तो बहुत एडवांस हो गया, आपने कार्य बना दी, कितना स्पीड से जाते हो और क्विकली सेकंड के अंदर खत्म हो जाते हो। पोल्यूशन इतना बढ़ा दिया, पहले लोगों की आयु, जब उनके पास ये सारे भौतिक सुविधाएं नहीं थे तो उस समय उनका जीवन अवधि बहुत लंबी थी। उनका खान पान आदि जिसमें बहुत शुद्धता, हर चीज घी है, मिल्क है, वेजिटेबल्स है, सारी चीजें। हमने सोचा कि हम एडवांसमेंट कर रहे हैं, एक ही चीज में उन्नति कर रहे हैं जल्दी मरने के लिए, वास्तव में और कुछ नहीं। न्यूक्लियर एटम बॉम्ब्स आदि ये सारी चीजें बनाए हैं, क्यों? जल्दी मरने के लिए, रोकने के लिए कोई उपाय नहीं हो रहा है। असली उन्नति है कि कैसे इन 4 चीजों को रोका जाए या मृत्यु को कैसे रोका जाए, लेकिन उस चीज को अवॉइड करते हैं जो साइंस है। इसी कारण से जन्म का मतलब ही है मृत्यु। जन्म का दूसरा अर्थ क्या है? मृत्यु। प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं, ए सन इज बॉर्न, ओ यू आर वेरी ग्लैड। यदि किसी को पुत्र होता है तो बहुत खुश हो जाता है। आई हैव गॉट ए सन, बट इफ यू स्टडी फिलोसॉफिकली नो ही इज नॉट बॉर्न, डेथ इज बॉर्न, प्रभुपाद ने कहा। अब जनरली फिलोसॉफी के शास्त्र के दृष्टि से आप देखोगे कि कोई व्यक्ति जन्म लेता है, वास्तव में जन्म ने जन्म नहीं लिया, बल्कि किसने जन्म लिया है, मृत्यु ने जन्म लिया है। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, डेथ इज बॉर्न बिकॉज द ग्रोइंग ऑफ द चाइल्ड मींस ही इज डाइंग, इट इज डाइंग, द डाइंग प्रोसेस। हर क्षण, हर रोज, हर समय कोई बच्चा ने जन्म लिया है, बड़ा हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे मर रहा है, मतलब ये हो रहा है, कम हो रहा है। तो डाइंग प्रोसेस तो तभी से शुरू हो गई जब से हमने क्या किया, जन्म लिया है। तो इसलिए हम अपने जीवन में कई पार्टनर चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक पार्टनर हमें नहीं छोड़ेगा, वो कौन है, मृत्यु है। शास्त्र कहते कॉन्स्टेंट पार्टनर, ये पार्टनर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, जिस प्रकार से शैडो, छाया हमारा पीछा नहीं छोड़ती, उसी प्रकार से हम अपने जीवन में बचपन से लेकर कई मित्र बनाते हैं, पार्टनर्स बनाते हैं, चेंज करते जाते हैं, बदलते जाते, लेकिन एक पार्टनर नहीं छोड़ता हमारा, हमारे साथ नहीं छोड़ता। और वो क्या है, भगवान कहते हैं मृत्यु, क्योंकि गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण कहते हैं जात शहीद ध्रुवम मृत्यु, जात शहीद ध्रुव मीन्स निश्चित, जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस प्रकार से शास्त्र वर्णन करते हैं, पृथ्वी दह्यते येन मेरु चापि विशीर्यते, शुष्यते सागर जलम शरीरश च काकथा। कहते कि इस पृथ्वी में ऐसी ऐसी अवस्थाएं आती है, विप्लवादी होते हैं, कि पृथ्वी दह्यते येन, जो प्रलय आदि होता है, संहार होता है, उसमें पृथ्वी भी सब प्रकार से जलने लगती है, विनाश होने लगती है, बड़े बड़े जो माउंटेन्स हैं वो टूटने लगते हैं, गिरने लगते हैं, सागर का जल सूखने लगता है। तो ये शरीरश क्या कथा, उन्होंने कहा उस श्लोक में, कहते फिर शरीर की क्या कथा है, इतनी बड़ी बड़ी चीजें डिस्ट्रॉय हो रही है, तो ये शरीर ये क्यों नहीं डिस्ट्रॉय होगा, क्यों नहीं खत्म होगा, निश्चित रूप से। इसलिए जब बड़े बड़े हर कोई इससे भयभीत है, एक्चुअली वास्तव में आप देखिए श्रीमद् भागवतम में, जब कंस अपनी जो बहन है देवकी को ले जा रहे थे ना रथ के ऊपर, और घोड़ों की लगाम उनके हाथ में थी, तो उन्होंने आकाशवाणी सुनी, क्या आकाशवाणी सुनी, भगवान को आना ही पड़ा, बस एक व्यक्ति मृत्यु से भयभीत हो गया, भगवान को पूरा अवतरित होना पड़ा। जब आकाशवाणी सुनी कि अरे अरे मूर्ख, जिस बहन का रथ आप चला रहे हो, हक रहे हो, उसका जो आठवां पुत्र है आपके मृत्यु का कारण बनेगा, तो इतना भय, बड़ा राजा हो सकता है, मालिक हो सकता है, मिनिस्टर हो सकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति इससे भयभीत है। तो ऐसा जो वसुदेव कंस है, वो कंस तुरंत तलवार निकालता है और क्या करता है, क्योंकि मृत्यु कहां से जन्म लेने वाला था, देवकी के द्वारा। और कृष्ण कहते हैं, गीता में कहते हैं, मृत्यु सर्वहरशा अहम, अहम मीन्स मैं, हे अर्जुन, जो मेरे चरणों में नेचुरली सरेंडर नहीं होते, मेरी शरण नहीं ग्रहण करते प्रॉपरली, और मुझे अवॉइड करते हैं, उन लोगों के पास भी मैं जाता हूं और उनकी सारी चीजों को मैं हरण करता हूं। किसी ने पूछा, भगवान कौन से रूप में जाते हो आप उनके पास, तो भगवान ने कहा कौन सा रूप है, मृत्यु सर्वहरशाहम, गीता के एक श्लोक में भगवान कहते हैं, मृत्यु के रूप में जाता हूं और मैं सारी चीजें उनकी हरण करता हूं। तो वही कंस उन्होंने सोचा इसके द्वारा मेरी मृत्यु है, तो उन्होंने देखा ये मेरी बहन है, शादी का दिन है, उसी दिन सीधा तलवार लेकर देवकी को मारने के लिए लड़ पड़ा, बाल पकड़ लिए उसके, गर्दन काटने वाला था। तो वसुदेव ने कहा, अरे जिसने जन्म ले लिया उसके द्वारा इतना क्यों भयभीत हो रहे हो, मृत्यु जन्म वता मेरा देह न सह जायते, उन्होंने कहा तुम इतना, वसुदेव ने कहा अरे कंस तुम तो इतना शूर शक्तिशाली शौर्यशाली व्यक्ति हो, तुम इतना भयभीत क्यों हो रहे हो? वसुदेव ने कहा कि जिस जब ये जन्म कोई व्यक्ति लेता है उसके साथ साथ दोनों चीजें जन्म लेती है, मृत्यु भी उसके साथ साथ जन्म लेता है, चाहे वो अभी 100 साल के बाद हो या फिर कुछ दिनों में हो। तो वसुदेव ने बहुत उनको मृत्यु के बारे में बहुत बड़ा लेक्चर दिया एक, तब जाके वो थोड़े से शांत हो गए और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है अभी आपको मैं जेल में रखता हूं, लेकिन एक शर्त है, जो भी बच्चा जन्म लेगा उसको मेरे पास ला दो। तो इस कारण से हम देखते हैं कि हमें अपने कई मित्र छोड़कर चले जा सकते हैं, पीछे छोड़ के चले जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं, लेकिन मृत्यु हमें कभी छोड़ता नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम सोचते हैं कि जो मृत्यु नाम की चीज है वो मेरे लिए नहीं बनाई गई है कि नहीं? आपने वो कई बार वो श्लोक सुना है, फिर भी मैं रिपीट करता हूं, जो पांडवास हैं, पांडव जो वनवास के लिए गए थे, द्रौपदी को जो प्यास लगी तो उस समय द्रौपदी ने कहा मेरे लिए पानी लाओ, तो युधिष्ठिर ने नकुल सहदेव को भेजा, वो गए जलाशय के किनारे, वहां एक वृक्ष था, वृक्ष के ऊपर एक यक्ष एक देवतागण होते हैं भूत आई डोंट नो, तो उनको पूछा, यक्ष ने देखा कि हे नकुल सहदेव आप ये जल लेने से पहले क्या करो, मेरे प्रश्न के उत्तर दो, यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना जल लोगे तो तुम मूर्छित हो जाओगे, मर जाओगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं हम तो बहुत शक्तिशाली हैं। उन्होंने जल लिया, पहले पिया, पीने मात्र से वो मूर्छित हो गए। फिर अर्जुन गए, भीम गए, इनकी भी वही दशा हो गई। युधिष्ठिर महाराज गए, युधिष्ठिर महाराज को वही प्रश्न पूछा। महाभारत में 100 प्रश्न आते हैं, उस एक्शन ने 100 प्रश्न पूछे थे, उसमें से एक प्रश्न था, बहुत अच्छे प्रश्न है वो, उसमें से ये प्रश्न था किम आश्चर्य, ये बताओ युधिष्ठिर महाराज इस जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज तो भगवान के महान भक्त है, विद्वान पर्सनैलिटी है, उन्होंने उत्तर दिया अहानी अहानी भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेष स्थावरम् इच्छन्ति किम् आश्चर्य अतः परम्। कि युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि अहानी अहानी दिन रात व्यक्ति जा रहा है, मर रहा है, यमालय जा रहा है, यम की लोग जा रहा है, और हर कोई व्यक्ति अपने आंखों से देख रहा है, सुन रहा है, चर्चा कर रहा है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा लेकिन जो बचे हुए लोग है ना, शेष स्थावर इच्छन्ति, जो बचे हुए है वो सोचते हैं कि ये जो मृत्यु मेरे लिए नहीं है, हमें लगता है नहीं मेरे लिए नहीं है, लेकिन वास्तव में व्यक्ति को जग जाना चाहिए, उसको सोते नहीं रहना चाहिए, हाँ कि ये मेरे लिए निश्चित है, चाहे मैं सोचू या ना सोचू, समझू या ना समझू। जैसे खरगोश है, हमारी स्थिति उस खरगोश के समान है, हाँ खरगोश के पीछे कोई शेर या कुछ लगता है तो जाता है और आंखें बंद करके बैठ जाता है, आंखें बंद करके कहते हैं कि अभी मैं सुरक्षित हूं, अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है सब कुछ। हमारी वैसी स्थिति अज्ञानता, हम खरगोश के पास भाते, हमने अपने आंखों को ढक लिया है और हम अज्ञानता के कारण क्या हो चुके हैं, हम सोच रहे नहीं मैं इसी जगत में ठीक हूं, सेफ हूं। लेकिन इसलिए तो हमें शास्त्र की आवश्यकता है, इसलिए हम सबसे पहले प्रार्थना चांट करते हैं लेक्चर से पहले, क्या है? ओ अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान अंजन शलाकया, कि मेरा जन्म अज्ञान के अंधकार में ही हुआ, लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु है उन्होंने ज्ञान रूपी अंजन काजल मेरे आंखों में लगाया है, आंखों को खोल दिया है, जिसके द्वारा मैं जगत को देख पा रहा हूं, अपने जीवन को समझ रहा हूं। जैसे श्रील प्रभुपाद बहुत सारे उदाहरण दिया करते थे, वो कहते थे कि व्यक्ति को लगता है कि मेरे लिए नहीं है ये, उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के लिए है, उस व्यक्ति के लिए है। अज्ञानता के कारण हम भूल जाते हैं कि अगला नंबर मेरा ही है। प्रभुपाद कहते हैं कसाई के, कसाई जो होता है रोड में, आप देखते होंगे कई सारे बकरे काट के लटकाते वो लोग, और साथ में दो तीन बकरे वहां होते हैं जीवित, उनको हरी घास खिलाता रहता है और वो मस्ती में खा रहे हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि अगला नंबर किसका है, मेरा है। हम बंगाली में कहा करते थे, वो घुटे पोरे गोबर हासे, वो कहते थे कि दो प्रकार के गोबर, गोबर जानते हैं ना, एक होता है गीला, कंडे बनाते हैं ना चूल्हे में डालने के लिए, तो ये गीला होता है और दूसरा सूखा होता है। तो वो सूखे को गीला देखकर बोलता है, अरे हंसता है उसको देखकर कि वो क्या हो रहा है, जल रहा है। अभी ये गीले को पता नहीं है कुछ ही दिनों में उसको भी जलना है, सूखना है, उसका भी समय आने वाला है। हाँ, वी आर नेक्स्ट, हम क्या है, हम अगली बारी हमारी है। तो इसी प्रकार से ये जो शरीर है, जो हमें किराए का घर है, हाँ, इस किराए के घर का हमें प्रॉपरली यूज करना चाहिए जब तक ये हमारे पास है। और मृत्यु नामक चीज एक लंबी तलवार है, और वो तलवार कहाँ टंगी हुई है, गर्दन के ऊपर है, कभी भी टूट सकती, कभी वो नीचे गिर सकती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को बहुत अधिक सावधान होना चाहिए। अब उसको क्या करना चाहिए, शास्त्रों के द्वारा दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। उस आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा वो जान सकता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं और मैं आध्यात्मिक आत्मा हूं, और ये मृत्यु तो शरीर के लिए है, मेरे लिए नहीं है। इवन जितने बड़े बड़े लोगों ने प्रयास किया है, हिरण्यकश्यपु का नाम सुना है आपने, हिरण्यकश्यपु ऐसी पर्सनैलिटी थे जिनका गुणगान इंद्र चंद्र नारद आदि सब उनके दरबार में बैठ के उनका भजन करते थे, करताल लेकर उनका स्तुति, उनके ऊपर श्लोका रचना करते थे, इतना भयावह असुर था। हाँ, लेकिन उसने कितना प्रयास किया, कई हजार साल उन्होंने तपस्या की, अंगूठे के ऊपर खड़े रहकर 60,000 साल बिना कुछ खाए, शरीर का सारा जो बॉडी है चींटियों ने खा लिया था, हड्डी बची थी, लेकिन फिर भी वो जीवित थे और ब्रह्मा की प्रार्थना कर रहे थे। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा ने अपने जो कमंडलों से जब जल डाला, हिरण्यकश्यपु को बॉडी फिर से प्रॉपरली मिला और उन्होंने कहा वर मांगो। क्या वर मांगा उन्होंने, मुझे क्या नहीं चाहिए लाइफ में, मृत्यु नहीं चाहिए। उसी को उन्होंने बता, नहीं ना चाहने के लिए उनका जितना बुद्धि कार्य कर रहा था उतना उन्होंने बोल दिया, मेरी हत्या से कोई शस्त्र आश्रय से मृत्यु ना हो, जल से ना हो, वायु से ना हो, मनुष्य से ना हो, देवताओं से ना हो, पशुओं से ना हो, अंदर ना हो, बाहर ना हो, ऊपर ना हो, नीचे ना हो, जितना मर्जी जीव अपनी बुद्धि को लगा ले, भगवान ने दिखा दिया आप जितनी मर्जी बुद्धि लगाओ बचने का, लेकिन इससे बचने वाले नहीं है। ये सब हुआ तो भगवान प्रकट हो गए। हाँ, किस रूप में प्रकट हुए, नरसिम्हा, ना वो पशु है ना वो आदमी है, नर और सिम्हा। तो भगवान प्रकट हुए और इजीली उनको मारा। तो ऐसे ही प्रभुपाद कहा करते थे, एक व्यक्ति था, क्योंकि एक व्यक्ति था और वो बचने का प्रयास कर रहा था, उसने क्या किया, यमदूत आने वाले थे तो उसको ले जाने के लिए, मृत्यु होने वाली, तो उसने सोचा यमदूत आने से पहले मैं कुछ चमत्कार करता हूं। तो उसने अपने जैसे बहुत सारे स्टैचूज, पुतले, मूर्तियां बना ली, पूरा हॉल भर दिया, घर का ड्राइंग रूम भर दिया, खाली कर दिया, नो फर्नीचर, अभी मेरा ये होने वाला है, घर को छोड़ना है मुझे, दो घर, एक तो जिस घर में रह रहा है, दूसरा ये शरीर है कि नहीं, आत्मा के लिए घर है तो इसको भी छोड़ना है। तो इन्होंने अपने सारे मूर्तियां पुतले बना के रख दिए और ये भी वैसे ही बैठ गया मूर्ति मूर्ति की तरह। यमदूता जाए ढूंढते हुए, अरे क्या है यहाँ, यहाँ तो वही सब जगह वही एक ही व्यक्ति है, तो यमदूत तो हमसे ज्यादा क्या है, चलाक है, चतुर है, बुद्धिमान है। ये एक यमदूत आया था जिसने घास का एक तिनका लेके आया था, लंबा वाला, इतना लंबा घास का कड़क तिनका, वो लाया, उसने कहा कौन है ये अद्भुत व्यक्ति है, किसने बनाई इतनी सारी मूर्तियां, आपस में बात कर रहे थे, क्या सौंदर्य है, बिल्कुल एक जैसी दिखती है। फिर उसने क्या किया, उस एक यमदूत ने वो घास का लंबा तिलका लिया और एक मूर्ति के कानों में डाला, कानों में डाला तो इस कान से इस कान में निकला, तो दूसरा अद्भुत कहते क्या अमेजिंग, कैसी कला है, इतना तिलका यहां से डाला तो वहां से आ रहा है। वो व्यक्ति स्वयं है, उन्होंने कहा जिस भी व्यक्ति ने ये बनाया है ना वो व्यक्ति सबसे अधिक बुद्धिमान है, उसके बुद्धि का कोई तुलना नहीं कर सकता। अभी ये जो मूर्ति के जैसा बैठा था, थोड़ा सा स्तुति अपना सुन लिया, उसने कहा मैं वही व्यक्ति हूं। यमदूत आए, चलो हम आपकी तलाश में थे, तो हम जितना मर्जी प्रयास करें इससे बचने के लिए। एक बार एक प्रभुपाद कथा कहा करते थे, गाय गो माखले यम छेड़े ना, बंगला में एक कहावत है कि आप अपने शरीर को मल से पूरा लपेट लो फिर भी आपको कौन नहीं छोड़ेगा, यमदूत नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा एक व्यक्ति ने ऐसे किया, मृत्यु आने वाली थी तो उसने सारे शरीर को मल टॉयलेट से पोत दिया और बड़ी आगे सोचा यमराज भाग जाएंगे, लेकिन यमराज हमसे अधिक बुद्धिमान है, वो एक सुअर को लेके आए साथ में। सुअर ने क्लीनिंग कर दिया, सफाई उसको पकड़। तो मैं ये सारी चीजें क्यों शास्त्र वर्णन करते हैं कि हम जीने के लिए नहीं बने, हम बने किस लिए हैं, मरने के लिए, लेकिन उसकी कला को हमें सीखना होगा। इसलिए भागवतम का पूरा जो उद्देश्य है हाउ टू डाई प्रॉपरली, सही रूप से हमें कैसे मरना चाहिए। तो वास्तव में शास्त्र वर्णन करते हैं कि व्यक्ति को उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, उसके सॉल्यूशन को जानना चाहिए, समझना चाहिए और अप्लाई करना चाहिए। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृत्तो, हे अर्जुन तुम्हें यहां सब ये लोग जो देख रहे हैं ना ये इनका विनाश करने के लिए मैं आया हूं यहां, काल क्षय लोक कृत प्रवृत्तो। आप पांचों पांडवों के अलावा सबका क्या होने वाला है, विनाश होने वाला है। तो कोई कह सकता है कि ये क्या है, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं उनको भी तो मरना पड़ता है, जो भक्ति कर ही नहीं रहे वो भी तो मर रहे हैं, लेकिन उनके मृत्यु का और जो भौतिकतावादी है भगवत भक्ति जो नहीं कर रहे उनके मृत्यु में जमीन और आसमान का अंतर है। प्रभु शास्त्र वर्णन करते जिस प्रकार से बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में पकड़ती है यहां से वहां ले जाने के लिए, और वही बिल्ली मुंह में और किसको पकड़ती है, चूहे को पकड़ती है, तो कौन आनंदित होता है, किसको अच्छा लगता है दोनों में से, जब बिल्ली मुंह में पकड़ती है तो किसको अच्छा लगता है, दांत वही है, ऐसे नहीं कि उसने कुछ बच्चे को पकड़ना है तो कुछ स्पॉन्ज वो लगा दिए दांत में, नहीं दांत वही है, तो मृत्यु दांत के समान है लेकिन हैंडलिंग करने का तरीका अलग है। वही बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है, बच्चा इतना अरे अपनी माँ मुझे खुजला रही है और आनंद होता है उसको, आराम से रख देती है, लेकिन वो जो बिल्ली है वही उसी दांतों से चूहे को पकड़ती, पहले तो उसके साथ खिलवाड़ करती है, भागो बच्चे भागो, तो भागता नहीं, उसको लगता है मैं फ्री हो गया हूँ, व्यक्ति को भी वैसे ही लगता है लाइफ में भी फ्री हो गया, फ्रीडम मुझे मिला है, लेकिन नहीं, अगले क्षण ये जो डेथ है या बिल्ली है वो पकड़ने वाली है, चूहे को जैसे पकड़ा जाता है वो तो चिल्लाने लगता है, छटपटाता है। तो उसी प्रकार से जो भगवान का भक्त है, नारायण परे सर्वा न कुतश्चन बिभ्यति, तो जो भगवान के भक्त है वो भयभीत नहीं होते, क्योंकि उनके पास भगवान वो सामर्थ्य देते हैं, वो शक्ति देते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को, ये तो हमने सारी चर्चा की जो मृत्यु की, ये किस कौन किसके मृत्यु की बात की हमने, शरीर की, शरीर का मृत्यु, किसका मृत्यु, शरीर का, लेकिन आत्मा के लिए भी डेथ है, और वो क्या है, स्क्रिप्चर कहते हैं फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा, कृष्णा का कृष्ण को भूल जाना ये आत्मा के लिए मृत्यु है, हर एक जो जीव है। इसलिए शास्त्र कहते हैं जावत मरण नाही उपसन्न हाय तावत से वह कृष्ण करी यानी चाय, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जब तक ये मृत्यु हमारे नजदीक नहीं है तब तक उसको बुद्धिमानी से क्या करना चाहिए, अपने जीवन में परफेक्शन प्राप्त करने का उपाय ढूंढना चाहिए। हमें इस मृत्यु का भी मृत्यु ढूंढना चाहिए। हमें क्या चाहिए, चिकित्सा। हमें ऐसा डॉक्टर ढूंढना चाहिए, ऐसी मेडिसिन ढूंढनी चाहिए कि जो मृत्यु को भी मार दे, क्या कर दे, डेथ फॉर डेथ, डेथ के लिए डेथ। और वो क्या है, शास्त्र कहते हैं हे लोकाश्नतु प्रसिति मरण व्याधे चिकित्सा इमाम। वो कहते हैं कि ये क्या औषध है ये सब समस्या के लिए। इदं शरीरं परिणाम पेशलं पतति अवशं शत संधि जर्जरं किम औषधं पृच्छसि मूढ दुर्मते निरामयं कृष्ण रसायनं पिबं। तो शास्त्र कहते हैं इदं शरीरं, ये जो बॉडी है जिसको आपको इतना गर्व है अपने शरीर से, ये शरीर बना ही कितनी गंदी चीजों से है, हड्डियां है, मलमूत्र है, स्किन आदि है, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। तो ये शरीर परिणाम पेशलम, शास्त्र कहते हैं ये बॉडी निश्चित रूप से विनाशशील है। छह प्रकार के परिवर्तन है ना, चेंजेस है बॉडी में, क्या है, पहला है जन्म लेता है, दूसरा है बढ़ता है, तीसरा है वो स्थिर हो जाता है, चौथा है अपने बॉडी से बाय प्रोडक्ट बच्चे पैदा करता है, और पांचवा क्या है, डिस्ट्रॉय होने लगता है, क्षय होने लगता है, बुढ़ापा आ जाता है, और जो आखिरी है वो क्या है, विनाश। तो इस भौतिक जगत की हर चीज में छह प्रकार के परिवर्तन चेंजेस हम भगवत गीता के द्वारा समझते हैं। तो शास्त्र कहते पतति अवशम शत संधि जर्जरम, कि ये शरीर के साथ ये होना ही है निश्चित, कोई भी नहीं बचा, अवश्य निश्चित रूप से शत संधि जर्जरा, और जितने भी जॉइंट्स हैं ये सारे जॉइंट्स दर्द करने वाले हर एक के बॉडी में, कोई कह नहीं सकता कि मैं एक्सेप्शनल हूं इस के लिए, नहीं। भगवत गीता कहते कि इम्पॉसिबल, तो कहते कि ढूंढो, सर्च ढूंढो, उपाय को ढूंढो, किम औषधम पृच्छसि मूढ दुर्मते। वो कहते अरे मूर्ख व्यक्ति, इतना सब कुछ आपके साथ होने वाला है, आप उस पागल व्यक्ति की भांति क्यों कर रहे हो, जो व्यक्ति ने अपना घर बना दिया या घर को आग लग गई और वो सोच रहा है अभी कुआं खोदता हूं, ये मूर्खता है कि नहीं। तो घर बनाने के साथ साथ उसको कुआं भी बनाना चाहिए, आग लगते क्या करे, जल डाले। हाँ, तो उस उदाहरण से, एनालॉजी से हम क्या सीखते हैं कि व्यक्ति को किम औषधम पृच्छसि मूढ दुर्मते, कि हे व्यक्ति आप मेडिसिन पूछो इस मटेरियल समस्या के लिए, क्या क्या मेडिसिन है, निरामयम कृष्ण रसायनम पिबम, और क्या मेडिसिन है, कृष्ण रसायन, कि ये अच्छा मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी, क्योंकि ये शरीर कभी सुख तो देने वाला है नहीं, क्योंकि सुख एक होप है, केवल क्या है, होप है कि हाँ मिलेगा भौतिक रूप से, लेकिन सुख नाम की चीज नहीं है। क्यों, क्योंकि गीता में कृष्ण कहते हैं, दो इस भौतिक जगत के स्वभाव का, नेचर का वर्णन करते हैं, दुखालयम अशाश्वतम, फुल ऑफ मिजरीज, और दूसरा टेम्पररी है ये जो जगत है, तो यहाँ कहाँ सुखालय है, केवल होप है कि हाँ मैं एक दिन दुखी हो जाऊंगा, ये केवल होप। वो आपने एक स्टोरी सुनी होगी, थोड़ी सी सुनने के लिए इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिल्म में आपको सुनाता हूँ। एक गधा था, वो गधा बहुत सारा काम करता था अपने मालिक के वहां, और उसका एक दूसरा मित्र गधा, उसका फ्रेंड आता है उसके पास और कहते हैं अरे क्या तुम लगे पड़े हो दिन रात केवल थोड़े से घास के लिए, लेकिन तुम देखो तुम्हारा मालिक तो गले में रस्सी भी नहीं बांधता, तुम भाग के चले जा सकते हो माउंटेन्स में, चारा गहा में जहां घास खा सकते हो, फ्रीली घूम सकते हो। तो नहीं नहीं नहीं, इतना क्यों यहाँ कष्ट उठा रहे हो, उसने कहा कि नहीं तुम्हें पता नहीं है अगला मालिक कौन बनने वाला, मैं ये कुछ ही दिन का फेज है, हम कहते ना लाइफ में ये फेज चला जाए ना तब सुखी हो जाऊंगा, और हर साल कुछ ना कुछ लाइफ में फेज आता है, ये थोड़ा ठीक अभी बनाए नहीं, ये जगत सुख के लिए बनाए नहीं है, तो शास्त्र हमें गाइड करते हैं। तो बस उस गधे ने दूसरे अपने मित्र गधे से कहा, कि नहीं अभी ये थोड़ा दिन है, क्योंकि उसने क्या किया था, एक दिन सुना था मालिक से, सुना था क्या सुना था, वो जो मालिक अपने बेटी को डांट रहा था जो पढ़ाई नहीं कर रही थी ठीक से, उसने कहा कि तुम ना ठीक से पढ़ाई नहीं करते हो, तुम्हारी जो शादी है मैं गधे के साथ करूंगा। इसको लगा बस अब ये फेज है काम करने का, अगला तो मेरा लाइफ तो बिल्कुल चेंज होने वाला है, न्यू। तो ये बस उसने सुना था, उसका अपने मित्र को कहता है कि आगे क्या है, सब काम जहां मुझे नहीं करने पड़ेंगे, मैं बॉस होने वाला हूं। जॉब, जॉब का मतलब है जस्ट ऑफ ए बॉस ना, तो उन्होंने कहा ये समय जाने वाला है मेरे जीवन से। तो हमारी स्थिति वैसी है, हम सिर्फ बस हो, हम बस मिलने वाला है, लेकिन नहीं हाँ, क्योंकि आत्मा का सुख, क्योंकि हम अपने जीवन में कोई थोड़ी सी सुख की आकांक्षा नहीं कर रहे हैं, हमारे लाइफ में हम ओशियानिक सागर के जैसा सुख चाहते हैं, चाहते हैं हर एक व्यक्ति चाहता है इतना लाइफ आनंदमय हो, ब्लिसफुल हो, सुखमय हो, बहुत अधिक चाहता है, लेकिन वो इस भौतिक शरीर से असंभव है। इसलिए व्यक्ति को भगवत गीता को समझना चाहिए, भगवान के संदेश को समझना चाहिए, और जब उसको समझते हैं अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो जीवन है हाँ सुखमय होता है। हाँ, तो इसलिए आज भगवत गीता जयंती है, आज के दिन भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया था 5000 साल पूर्व कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर। तो आप सब लोग बहुत अधिक फॉर्चुनेट भाग्यशाली हो कि आप भगवत गीता के इस संदेश को सुन रहे हो, समझ रहे हो। तो प्रयास कीजिए, क्योंकि आज भगवत गीता का उपदेश अर्जुन ने, अर्जुन को भगवान ने दिया, तो उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, अर्जुन को इस नॉलेज की कोई आवश्यकता नहीं है, अर्जुन तो एक इंस्ट्रूमेंट थे, माध्यम थे, जिनके माध्यम से वो सारा ज्ञान भगवान कृष्ण हमें देना चाहते हैं। और उस ज्ञान को हम जब अपने जीवन में लेते हैं, समझते हैं, हाँ, तो हम बहुत अधिक सामर्थ्यवान बन जाते हैं। तो भगवत गीता अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए, और यदि भगवत गीता हमारे जीवन का आधार नहीं है तो निश्चित रूप से गिरने वाले हैं। हाँ, जैसे एक लाइब्रेरी में एक अमेरिकन व्यक्ति एक साधु को ले गया, वहां उन्होंने दिखाया कि स्वामी जी देखो ये आपकी गीता की क्या हालत है, भगवत गीता की सबसे नीचे पड़ा हुआ था और उसके ऊपर बहुत सारी किताबें थी। तो साधु महाशय गए और उन्होंने गीता को ऐसे खींच लिया, जितनी भी किताबें थी वो क्या हो गई, गिर गई। उन्होंने कहा भगवत गीता क्या है, आधार है, किंग ऑफ नॉलेज। गीता में भगवत गीता के ज्ञान को राज विद्या कहा गया है, किंग ऑफ नॉलेज। तो ये नॉलेज हमारे पास हो भगवत गीता का, तो हमारा लाइफ में चाहे जो मर्जी सिचुएशन हो, क्योंकि हर एक का जो जीवन है हाँ वो अलग अलग विपदाओं से गुजरता है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी स्थिर। हाँ, ऐसे नहीं कि बिल्कुल चाणक्य पंडित ने कहा कहो कष्ट सौख्य निरंतरम, कौन ऐसा व्यक्ति इस संसार में जो हमेशा हमेशा के लिए सुखी है। दूसरे श्लोक में वो कहते हैं व्याधिना कौन पीड़िता, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका शरीर उसको कष्ट नहीं देता, हर एक के शरीर में कुछ ना कुछ ट्रबल्स है। इसलिए ये जो साइंस है हाँ, साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान, अरे हर एक व्यक्ति के लिए है जिस व्यक्ति के पास ये शरीर है। तो इसलिए आप ना आज के दिन व्रत लीजिए कि रोज मैं क्या करूंगा, भगवत गीता को पढ़ूंगा। भगवान बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं उस व्यक्ति से, चाहे जो मर्जी हो एक या दो श्लोक पढ़ूंगा। अब जानते हैं इस श्रीधरन जिन्होंने मेट्रो प्रोजेक्ट के हेड थे, इस श्रीधरन हमारे भक्त उनको मिलने गए थे लास्ट ईयर इसी दिसंबर महीने में, क्योंकि ज्यादातर लोगों को मिलने जाते हैं। तो ये श्रीधरन के ऑफिस में बैठे थे, उनके ऑफिस में तो सारे क्लॉक्स बड़े बड़े ये लगे हुए हैं, क्लॉक्स लगे हैं घड़िया। तो उनको पूछा कि आप क्या आपका दिनचर्या बताओ, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने घर को तब तक नहीं छोड़ता जब मैं घर से बाहर निकलने से पहले दो भगवत गीता के श्लोक नहीं पढ़ता, श्लोक का उसका अनुवाद और तात्पर्य, प्रभुपाद का गीता रखते हो। तो उन्होंने कहा ये इफेक्ट है। तो इसलिए भगवत गीता कि ज्ञान को आप समझिए और पढ़िए रोज। आज आज के दिन से भगवान से प्रार्थना कर सकते, कल से आप शुरू कर सकते इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि हम रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, टेलीविजन देखते हैं, हाँ इंटरनेट यूज करते हैं, मोबाइल्स पर बातें करते हैं, क्यों नहीं भगवद्गीता रोज हम पढ़े। चाहे दो कितना समय लगेगा, 10 मिनट, सारी चीजों के लिए हमारे पास समय है, लेकिन भगवान के लिए 10 मिनट हमारे पास नहीं है। फिर कृष्ण कहते आपके लिए भी मेरे पास समय नहीं है, जाओ फिर कोर्ट कचहरियां जाओ, हॉस्पिटल्स में जाओ, यहाँ जाओ, हमें चक्कर काटने लगाते हैं, मेरे पास मेरे लिए समय नहीं है, आपको एंगेज करता हूँ, आपका समय एंगेज करता हूँ आपको अच्छी तरह से। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, जब कृष्ण देखते हैं कि ये सिंसियर सोल है, वो मुझे जानना चाहते हैं, चाहता है, तो भगवान उस व्यक्ति को भक्ति प्रदान करते हैं। तो आप सबसे यही निवेदन है, प्लीज आज से आप ये व्रत लीजिए कि कल से एक श्लोक, दो श्लोक, वॉट एवर आपका जो भी दिनचर्या है उसके अनुसार पढ़िए, और इस भगवद गीता के संदेश को और भी लोगों के पास देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि गीता भगवान कहते हैं वो व्यक्ति मुझे सर्वाधिक प्रिय है जो इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाता है, इस गीता के नॉलेज को, उससे बढ़कर कोई सेवक नहीं है और ना होगा, भगवान कहते हैं। और यदि इस प्रकार से भगवान की सेवा करने की डिजायर केवल हमारे हृदय में हो तो कृष्ण फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब देखो श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, वो भारत से गए, क्या था उनके पास, 40 रुपए थे, केवल श्रीमद् भागवतम का एक बुक था, अपना एक छाता था, और उनको लेकर व्यक्ति सोच रहा है मैं अमेरिका जाऊंगा और भगवान के संदेश का प्रचार करना है, ये डिजायर थी, केवल भगवान की सेवा करने की डिजायर, 40 रुपए ले गए थे। और अभी इस्कॉन के इतने टेम्पल हैं, रशिया में 80 से अधिक मंदिर है, 40 अब्जावधि का प्रॉपर्टी होगा अराउंड द वर्ल्ड, कितने रशिया में कितने टेम्पल्स हैं, अमेरिका में, यूरोप वाली सब जगहों में। तो क्यों, क्योंकि एक व्यक्ति जब सिंसियरली ये इच्छा करता है कि मुझे भगवान की सेवा करनी है तो भगवान सारी चीजें उनको प्रोवाइड करते हैं। तो आप इच्छा करेंगे कि मुझे भी इस नॉलेज को देना है, निकलना है बाहर, किसी और व्यक्ति को मैं ट्राई करूंगा एक गीता देने का, तो भगवान आपकी इच्छा को देखकर वो अरेंज करेंगे। हाँ, मैं एक घटना बताता हूँ, हमारे एक भक्त हैं जिन्होंने बीटेक किया है, तो वसंत कुंज में वो जॉब करते हैं, यूथ है, तो अभी भी नया नया जॉब में वो जाते हैं, तो वसंत कुंज फरीदाबाद से जाते हैं वसंत कुंज, और वहां से शाम को वापस आते हैं, लेकिन जाते समय सुबह अपने साथ 15 भगवद्गीता ले जाते हैं, कितनी भगवद्गीता, 15। वो जाते हैं और आते समय वो वसंत कुंज का जो मेट्रो स्टेशन है वहां भगवद्गीता वितरण करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा भगवद्गीता वितरण कर रहे थे वो एक दिन, अभी एक हफ्ता पहले, तो एक शराबी व्यक्ति था, 1.5 घंटे से जो भी उनके पास आता था कहते गीता मत लो, गीता मत लो, वो शराबी व्यक्ति बहुत परेशान कर रहा था। तो फिर भी इनकी 14 गीता चली गई, 14 गीता डिस्ट्रीब्यूट हो गई, 1 गीता बची थी उनके पास। वो शराबी व्यक्ति वहां बैठा था, उसने कहा अभी तो तुम जाओ, क्या करो, कितने समय से गीता 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 करते रहते हो, बांट रहे हो। हाँ, तो उन्होंने कहा ये वक्त फिक्स है कि एक आखिरी भगवद गीता बची है, ये जब तक नहीं जाएगी किसी जीव के हाथ में तब तक मैं यहां से वापस फरीदाबाद नहीं जाऊंगा। शाम को 8:30 बजे का समय हुआ था, तो वो व्यक्ति शराबी कहता इधर आओ, उसने अपने जेब से 100 रुपए निकाले, कहता ये ले लो, गीता मुझे दे दो लेकिन तुम जाओ। तो कृष्णा इंस्पायर करते हैं, चाहे व्यक्ति वो कौन सी स्थिति में क्यों ना हो, क्योंकि भगवद गीता वो सूर्य के समान है। कोई कहेगा अरे शराबी नहीं पकड़ी, भगवद गीता को कोई फर्क नहीं पड़ता, सूर्य के संपर्क में मल मूत्र आदि आ जाए तो प्यूरिफाई हो जाते हैं। उसी प्रकार से भगवद गीता के संपर्क में चाहे घृणित से घृणित व्यक्ति क्यों ना आ जाए, पापी आदि, वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि ये भगवत सेवा करने की इच्छा को आप ना डेवलप करिए, कि कैसे मैं और भगवान की सेवा कर सकता हूँ। एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए हर रोज कि हमसे भगवान की सेवा ना हो जाए। और वो कैसे कर सकते, कोई कह सकता अरे हमारे पास टाइम नहीं है, सेवा तो मंदिर में ही होती है भगवान की। नहीं, आप क्या कर सकते हो भगवान की सेवा, दो प्रकार से, तीन प्रकार से कर सकते हो। सबसे पहला प्रकार है कि रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरी सेवा, रीड एवरी डे भगवद गीता, रोज भगवद गीता एक श्लोक दो श्लोक पढ़े हम। और तीसरी सेवा कैसे कर सकते हो भगवान की, जो भी आपके संपर्क में आ जाए उस व्यक्ति को ये नॉलेज शेयर करो उसके साथ, जो भी आपके अनुभव आए प्रयास करो उसको ये नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करने का, बांटने का। हाँ, तो ये सिंपल प्रोसेस है, चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्कर हो, बिजनेसमैन हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, ये तीन चीजें आप जिस स्थान में हो उस स्थान में कर सकते हो। और कृष्ण ने कहा यदि कोई व्यक्ति ये तीन कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति के घर में मैं पर्सनली निवास करता हूँ। कौन से तीन कार्य करने से, हरि नाम का उच्चारण करना, भगवद गीता को पढ़ना, ये नॉलेज को आगे पहुंचाना, बस। तो आप सब तैयार हैं? कितना सिंपल है, सिंपल है कि नहीं, सरल है। तो शास्त्र बहुत प्रैक्टिकल है हमारे लिए। तो आप सबसे निवेदन है कि आप इसको कंटिन्यू करिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है, कमेंट्स हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं तो हम अभी थोड़ी देर के लिए चैंटिंग करेंगे वन राउंड हरे कृष्ण मंत्र।